నష్ట ప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా
క్లాస్ వన్
ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ భూమిజ్ఞానందస్య జ్ఞానోజనోశనాకయ చక్షురోపణితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యామనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప ప్రదామహం దాతి స్వాపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాగ్రజాగణారఘునాథమిదం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదా సగణలలిత శ్రీవిశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణకృష్ణాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతీతి నామినే శ్రీవాస మానవీ దేవి దైతాయ త్రిపాదే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన దాయినే భవవే నమః మాధుర్యోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీరూపానుగా వందిత శ్రీగౌర కరుణా శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తే అధీన తారిణే రూపానుగా విరుద్ధాప సిద్ధాంత ద్వాంతహారిణే నమో గౌర కిశోరాయ సాక్షాద్ వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలంబాయ సాంబోధే వాదాంబుజాయ తే నమః నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగౌరాయ తే గౌరావిర్భావ భూమేశ నిర్దేశ సద్రాంబుజ విశ్వసార్వభౌమ శ్రీ వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసంధుభ్య ఏవ చ పతితానామ్నేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణాయ జయ భదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణచైతన్య నామ్నే గౌరద్విషే నమః పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపం స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే జయకాంశురతోర్భంగో మహామండలమధేరపతి మత్సర్వస్వపదాంబుజో రాధావత నమో దివ్యవృందారణ్యకల్పద్రుమాదః శ్రీమంతారసింహాసనస్థో శ్రీమద్ధాశీల గోవిందదేవో ప్రశాలమానం స్మరామి శ్రీమాన్ దాసరసారంభీ వంశీవటాచస్థిత హర్షం వేణోస్వనేర్గోపీర్ గోపినాథ శ్రేయస్తన సప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి దృశభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
హరే కృష్ణ. ఉడుపి క్షేత్ర మే స్వాగత్ హే. ఉడుపి तो सबसे पहला हम इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं. जब कोई भी तीर्थ स्थान में जाते हैं सबसे पहला लोग पूछते हैं कितना साल पुराना है. लोगों का प्रश्न आता है कि मंदिर कितना साल पुराना है। तो ये मंदिर कितना साल पुराना का अर्थ क्या है? ये पत्थर कितना साल पुराना है, विग्रह कितना साल पुराना है, ये नहीं। ये क्षेत्र का वर्णन जो है वो पुराणों में हुआ है। तो ये क्षेत्र सनातन होता है, शाश्वत होता है। ऐसा नहीं कि उडुपी कृष्ण इधर आए तभी से उसका ख्याति है, नहीं, उसके पहले से भी उसका क्षेत्र महिमा है। तो एक क्षेत्र महिमा जनरली ऐसा होता है, स्वाभाविक तरीके से कोई भी क्षेत्र है वो शैव क्षेत्र होता है, शिवजी रहते हैं। जैसे बद्री है, पहले अस्तित्व में वो केदार क्षेत्र है, केदार क्षेत्र में शिवजी ने कृष्ण को बद्रीनारायण को रहने का स्थान दिया। फिर भगवान को प्रकट होना है, वैसे प्रकट नहीं होंगे, उसका प्रकट होने से पहले कुछ आधार होना चाहिए, है ना? तो आधार बनाने वाले हैं शिवजी, शिवजी का एक कार्य है। क्षेत्रपाल का अर्थ है केवल क्षेत्र को पालन करने वाला, रक्षा करने वाला ही नहीं, उनको मेंटेन करने वाला। जैसे वॉचमैन खाली वो गेट के पास खड़ा नहीं रहता है, कभी कभी वो जाके पानी मार देता है, गार्डन है तो सब कुछ करता है कि नहीं। तो वैसे शिवजी ये पूरा क्षेत्र को पालने वाले हैं, he maintains it, not only protects it, he is also maintainer. Protection, maintenance. Protection का अर्थ क्या? संरक्षण, दूसरा है देखभाल भी करना, पालन, दोनों करते हैं। जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो वॉचमैन जैसे खड़ा रहेंगे ऐसे, नहीं, वो नहीं, ये प्रोटेक्टर। अगर बराबर है जगह तब कृष्ण आएंगे, लेकिन अगर बराबर होने के बाद भी अगर उधर कोई कृष्ण के प्रेम प्रदान करने वाला कोई भक्त नहीं तो कृष्ण आएंगे नहीं। तो खास करके शिव और पार्वती, पार्वती दुर्गा है, दुर्गा कृष्ण की बहन है, हम सब जानते हैं, वी नो, क्योंकि भागवतम में भगवान की प्रकृति के पहले कौन प्रकट हुआ? दुर्गा जी प्रकट हुई। तो भगवान ने उनको आदेश दिया, जाओ जाके पहले प्रकट होके क्या करो, आप घोषणा करो मैं आ रहा हूं करके, और ये कार्य करने की वजह से क्या होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, मेरे से ज्यादा आपके भक्त होंगे। तो इधर के उड़पी के नजदीक में एक जगह है विमनगिरी, जिस पर्वत के ऊपर बैठ के परशुराम जी ने तपस्या किया था, परशुराम के बारे में बाद में कहेंगे, उधर दुर्गा जी निवास स्थान है, इधर शिव जी का निवास स्थान है। तो सबसे प्राचीन मंदिर है इधर का, प्राचीन जगह है वो है चंद्रमौड़ीश्वरा, इसलिए सबसे पहला हम चंद्रमौड़ीश्वरा मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए। चंद्रमौड़ीश्वरा ये नाम शिव जी को क्यों पड़ा? ऐसा नहीं कि शिव जी का जो नाम ये पहले से उनका ये नाम था, नहीं, शुरुआत में वो शिव जी के रूप में वो निवास विराजमान थे, इंतजार कर रहे और कब आएंगे भगवान इधर, कब प्रकट होंगे इधर, इसका देखभाल करो, इसको पालन करो, ऐसे ये भगवान का विग्रह निवास कर रहे। तो एक बार पुराणों में ऐसी घटना है, आपको मालूम है कि चंद्रमा को शाप दिया, किसने शाप दिया? दक्ष ने शाप दिया, दक्ष की 61 पुत्रियों को विवाह में दिया था चंद्रमा को। तो चंद्रमा तो थोड़ा सा हाँ, इनके पहली पत्नी के प्रति ज्यादा आकृष्ट हो गए थे, रोहिणी के प्रति, तो बाकी सब जितने भी है वो सब लोग जाके कंप्लेंट किए। दक्ष ने गुस्सा है, दक्ष ने क्या किया, उन्होंने किया शाप दिया, तुम क्षीण हो जाओगे। तो शाप सत्य हो गया, चंद्रमा का जो तेज होती क्षीण होने लगा, वो भागते भागते इधर आया चंद्रमा बाकी सब पत्नियों के साथ, आके इधर शिव जी से प्रार्थना किया। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे सर के ओर मैं तुमको रखूंगा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? चंद्र मौली ईश्वरा, यानी चंद्र मौली का अर्थ है चेहरा, यानी मुख या सर, जो चंद्र को अपने सर के ओर बैठा के रखे है वैसे ईश्वर है। दक्षिण भारत में ईश्वर का अर्थ है शिवजी, शिवजी को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर महेश्वर बोलते हैं ना उसको, ईश्वरा ईश्वर है ईश्वरा। तो चंद्र मौलीश्वरा कंट्रोलर ऑफ द मून गॉड, उन्होंने चंद्रमा को संरक्षण दिया और चंद्रमा को उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, बाद में दक्ष के साथ समझौता करके उन्होंने बाद में बताया ठीक है 15 दिन के लिए धीरे धीरे से आप क्षीण होते जाओगे, फिर वापस आपका पूरा आएगा, ऐसा समझौता हुआ, सब ठीक हो गया। तो ऐसे शिव जी का नाम ही चंद्र मौलीश्वर, ही इज द ओरिजिनल डेटी ऑफ दिस प्लेस, क्षेत्रपाल है इस जगह। तो क्षेत्रपाल पिताजी काली है तो बच्चा नहीं आएगा, माँ भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है, बहन होने पर भी वो वात्सल्य प्रकट करती है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। तो जहां कृष्ण जो है वात्सल्य की भूखे हैं, खास करके बाल कृष्ण के स्वरूप में क्यों है इधर, दुर्गा जी की वात्सल्य को स्वीकार करने के लिए है। तो जहां दुर्गा है, जहां शिव जी है, ये निश्चित रूप में कृष्ण का प्राकट्य होगा करके घोषणा है। दुर्गा जी का प्राकट्य का अर्थ क्या है, कृष्ण आ रहे हैं। तो जो लोग दुर्गा का ये करते हैं उनको मालूम नहीं है, दुर्गा का जो भी तिथि आता है, फॉर एग्जाम्पल राम नवमी है, उस समय नवरात्रि का दुर्गा का होता है ना, क्यों करते हैं स्तुति, क्योंकि दुर्गा का प्रकट करके बाद में कृष्ण का आह्वान किया जाता है, ये सिस्टम है, इज अ वैदिक सिस्टम। ऐसा नहीं कि ये डेमी गॉड वर्शिप है, वो डेमी गॉड वर्शिप नहीं है, क्योंकि डेमी गॉड्स आर वर्शिपिंग कृष्ण, सो आई वर्शिप द डेमी गॉड्स अलॉन्ग विद कृष्ण। तो इधर का जो देवता का पूजा है, मध्य वैष्णव थोड़ा देवताओं का पूजा करते हैं लेकिन वैष्णव तरीके से करते हैं। आप कोई भी दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे, दुर्गा जी तुलसी का हार पहने रहेंगे, क्या अर्पण कर सकते तुलसी दुर्गा जी को, नहीं कर सकते। लेकिन असियत में क्या है, उधर देखोगे उधर शालिग्राम रहेगा, सबसे पहला सारा भोग शालिग्राम को लगता है, तुलसी का माला सब शालिग्राम को भोग लगता है, उसका निर्माल्य जो है दुर्गा जी को अर्पण किया जाता है। वैसे ही शिव जी का मंदिरों में, वैसे कार्तिकेय मंदिरों में। तो ये मध्वाचार्य का मेन कार्य यह था, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश उनको यह था, कि मध्वाचार्य बहुत दुखी हो गए थे, खास करके जब नवद्वीप में गए मध्वाचार्य बद्री का दूसरा यात्रा से वापस आते थे, उस समय नवद्वीप में जाके रो रहे थे मध्वाचार्य, क्राइंग, क्योंकि नवद्वीप में भी यही हालत है कि दुर्गा का जो शाक्त पूजा है सबसे ज्यादा जो है ये क्षेत्र में, इधर ये एरिया में और बंगाल में, ये दो जगह सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम। इधर अभी इधर आप इंटीरियर्स में जाओगे जो दुर्गा के अलग अलग रूपों को जिस प्रकार पूजा करते हैं, आप भयानक है, भयंकर है, इतना तो मालूम है, इतना तो मालूम है, बहुत भावसिक, जैसे शाक्त का होता है ना ओरिजिनल शाक्त, ये है और ये बंगाल। तो बंगाल में जाके देखे यही हालत है, मध्वाचार्य को ऐसा लगा कि मैं क्या करूं क्या करूं, उनको ऐसा लग रहा था कि इधर ऐसा कोई मुझे सोल्यूशन मिलेगा, मैं इन लोगों को कैसे परिवर्तन करूं। तब उनके सपने में दो बार आए चैतन्य महाप्रभु, पहली बार आए उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु, उसका विस्तार से बाद में चर्चा करें, चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया तुम चिंता मत करो मैं प्रकट होके सबका खत्म करूंगा, लेकिन आप उसके लिए एक बुनियाद बनाओ, आप क्या करो ये जो देवताओं का जो पूजा है, जो तामसिक पूजा करते हैं, उसको थोड़ा सा वैष्णव टच दे दो। तब मध्वाचार्य ने क्या किया, सब लोगों का कहा कि देवता लोगों को पूजा करने की विधि ये है, तो लोगों का स्वाभाविक रुचि था देवताओं को पूजा करने की, तो उन्होंने क्या किया उसको एक वैष्णव टच दे दिया, क्योंकि मध्वाचार्य महाआचार्य सन्यासी उनको बात तो मानना पड़ेगा, तो सब लोगों ने क्या किया शालिग्राम को पूजा करने लगे और शालिग्राम को महाप्रसाद जो है वो देवताओं को दे दिया। इसलिए इधर इस क्षेत्र में देवताओं के मंदिर में जाने में भी कोई अपराध नहीं, ऐसा नहीं कि देवता का दुर्गा का मंदिर, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि शिव पार्वती इधर वात्सल्य प्रकाशित कर रहे हैं। इतना हद तक कि अगर एक क्षेत्र को अगर तुलना किया जाए शिव पार्वती के रूप में, कृष्ण पार्वती के गोद में लेटे हुए हैं, उडुपी कृष्ण जो है पार्वती के गोद में लेटे हुए और वात्सल्य का आस्वादन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक पौराणिक। तो ये जगह को पुराणों में उडुपी करके संबोधित नहीं किया गया, उडुपी जो है मॉडर्न नेम है, नया नाम है। ये पहले उसको रूप्य पीठा ऐसा कहा गया है, रूप्य पीठा रजत क्षेत्र, ये ओरिजिनल नाम है, कौन सा पुराणिक नाम है, या द नेम्स पुराणस, रजत पीठा रजत क्षेत्र या रूप्य पीठा, क्यों? रूप्य पीठ इसलिए कहा जाता है, ये अति सुंदर जगह है, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। तो और रजत क्षेत्र, रजत मतलब चमकने वाला, सिल्वर, इट इज शाइनिंग। तो क्यों चमकता है, क्यों सुंदर है? क्योंकि ये जो परशुराम क्षेत्र है, आपने सुना होगा परशुराम क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र का विस्तार होता है नासिक के दक्षिण की भाग से पूरा कन्याकुमारी तक। यानी हमारा जो ट्रेन आया ना, पूरा ट्रेन का जो रास्ता है उसको परशुराम क्षेत्र बोला जाता है। परशुराम जी ने क्या किया था, 21 बार उन्होंने प्रहार किया पूरा क्षत्रियों के ऊपर, 18 बड़े युद्ध किया, 3 छोटे युद्ध किया, और क्षत्रियों का वंश के वंश नाश, धनाधन नाश किया, और सारा प्रपंच को उन्होंने जय कर लिया। जय करने के बाद उन्होंने सोचा, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं सब लेके क्या करूंगा, सब कश्यपुनि को दान दे दिया, सब ब्राह्मणों को दान दिया, दो लो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तपस्या कर रहा है। अभी सब लोगों ने बोला ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े ब्राह्मण के गोत्र, उस समय ब्राह्मण लोग जो संभालने लगे, वैदिक संस्कृति को प्रस्ताव करने लगे, पूरा विश्व में अच्छा सा चल रहा। तो दान दिया हुआ चीज को थोड़ी ना लिया जा सकता है। मान लो कि मैंने कुछ दिया और मैं उधर इस्तेमाल करूँ, उसको पाप लगेगा। तो परशुराम ने सब कुछ दे दिया, वो कहाँ रखेंगे, रुकेंगे कहाँ, खड़ा रहेंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, बैठेंगे कहाँ। परशुराम ने कहा, चलो मैं अपने लिए नया जगह की सृष्टि करता हूँ। इसलिए केवल परशुराम क्षेत्र नहीं, उसको परशुराम सृष्टि कहा जाता है। तो एक जगह खड़े रहे, वो जगह जिस जगह पर खड़े रहे उस जगह उन्होंने दुर्गा जी का मंदिर बनाया। वो मंदिर है, हम लोग जाएंगे आज दोपहर को उधर, उसको विमनगिरी कहा जाता है, जहाँ जिसके ऊपर मध्वाचार्य जो है वो खेल कूद करते थे। वो उधर तपस्या करके, तपस्या करने के बाद उधर खड़े होके उन्होंने एक बाण फेंका। कुछ लोग थे बाण, कुछ लोग बोलते उनका वो परशु, उन्होंने फेंका और जितना दूर तक समुन्द्र में जाके गिरा, उधर से पूरा एक सुंदर सा भूमि प्रकट हुआ जो चमकने वाला है, शाइनिंग, चमक रहा था ये भूमि, सोने के जैसा, चांदी जैसा चमक रहा था, इसलिए उसको रजत क्षेत्र कहा गया। और इतना सुंदर था ये भूमि कि सारे देवता लोग सोचने लगे मैं इधर वास करेंगे। तो और एक कारण है कि इधर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर, आप एक क्षेत्र में आप हर 50 फुट में आपको एक मंदिर प्राप्त होगा, हर 50 फुट में कुछ ना कुछ मंदिर होगा, कुछ ना कुछ लीला होगा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कोई देवता तपस्या ना किया हो या देवता लोग आके पूजा नहीं किया हो, कोई कोई ये पूरा क्षेत्र ही ऐसा है, द होल लैंड इज अ स्पेशल लैंड। ये पृथ्वी का भाग नहीं है, ये जो भूमि है परशुराम क्षेत्र, ये पृथ्वी का भी नहीं है, ये हायर डायमेंशन से है, ऊपर की लोकों से है ये भूमि। इसलिए इधर का भूमि का मापना भी मुश्किल होता है और विचित्र विचित्र चीजें होता रहता है। इवन अभी भी जो लोग इधर निवास करते हैं वो थोड़ा सा बुद्धि सूक्ष्म है, वो हर चीज जैसे अलग अलग जगह नॉर्मली जो होता है उस प्रकार नहीं होता है। इट इज ए मिस्टिकल प्लेस, मिस्टिकल का क्या बोलेंगे, कोई कोई कुछ तो चमत्कारी जगह है। तो ये परशुराम क्षेत्र है, ये परशुराम क्षेत्र में भी उसका कैपिटल क्या है, परशुराम क्षेत्र का मुख्य भाग क्या है। हम आए तो गोकर्ण, आपने देखा होगा गोकर्ण स्टेशन आया था, गोकर्ण उधर शिव जी का मंदिर है, वो गोकर्ण से लेके नीचे सुब्रमण्य एक जगह है, सुब्रमण्य करके जैसे नीचे कार्तिकेय के मंदिर है। ये जो इसको कैनरा जो कोस्टल कर्नाटका बोला जाता है, इसको तुलुनाडु कहा जाता है। क्या है, तुलुनाडु। जैसे वो जो कुक है मुझसे बात कर रहे थे, कन्नड़ में बात कर रहे थे, लेकिन अपने आप में क्या बात कर रहे थे, किस भाषा में बात कर रहे थे, तुलु भाषा में बात कर रहे थे। ये तुलु भाषा इधर आप लोगों को मालूम है, इधर के लोग ये तुलु भाषा का लिपि नहीं है, देयर इज नो लैंग्वेज फॉर इट, तुलुनाडु इसको बोला जाता है। ये तुलुनाडु जो है ये इट इज अ कैपिटल फॉर द परशुराम क्षेत्र। ये तुलुनाडु का अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें से ये जो रौप्य पीठ जो है ये मेन, उडुपी जो है इट इज अ मेन प्लेस। तो ये उडुपी नाम कहां से आया, इसके पीछे 3 कारण है, देयर आर 3 नेम, 3 रीजंस फॉर इट।
कुछ लोग कुछ किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, लेकिन तीनों बराबर है, इसमें कोई दोष नहीं है। सबसे पहला है उड़पी का अर्थ है उड़ू प्लस पा, उड़ूपी हो जाता है। पा का अर्थ है पति, उड़ू प्लस पा, पा का अर्थ है पति, पति। उड़ू का अर्थ है नक्षत्र, तारा। संस्कृत में उड़ू का अर्थ है तारा, नक्षत्र। या नक्षत्रों का पति कौन है?
चंद्र।
चंद्र जहां आके तपस्या किया शिव जी का, उस जगह को उड़पी कहने लगे। ये चंद्र का दूसरा नाम है उड़पी। यही उड़पी का दूसरा अर्थ ये है, शिव जी का नाम भी उड़पी है। क्यों? क्योंकि सारा नक्षत्रों का राजा चंद्र, वो आके किसको पति के रूप में स्वीकार किया? शिव जी को पति के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? उड़पी। तो चंद्र और शिव जी के नाम के ऊपर ये उड़पी शब्द है, ठीक है। एक है। दूसरा है वो, क्योंकि कुछ कट्टर वैष्णव होते हैं, वो ये शिव जी का थोड़ी ना हमारे कृष्ण का है, थोड़ा भाव रहता है कि तो वो लोग इसको ज्यादा स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ये कृष्ण की वजह से नाम उड़पी पड़ा। एक तुलु भाषा में ओडुपा, वो ओडु, ये जो शब्द है जहाज, जहाज को सूचित करता है। वड़बांडेश्वरा ओडु वड़ऊ, ये जो शब्द है वो शिप को सूचित करता है। पा का अर्थ है पाना, प्राप्त करना, ठीक है। यानी हम लोगों ने भगवान को जहाज से प्राप्त किया। तो इसलिए इसका नाम उड़पी पड़ा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कोई गलत बात नहीं, इसके पास टाइम के हिसाब से वो सही है। वड़ऊ का अर्थ है जहाज, पा का अर्थ है प्राप्त, प्राप्त करना, पाना, ठीक है। वो तुलु भाषा में पा का अर्थ है पाना। वो तुलु भाषा जो है वो मिक्स है, कन्नड़ा और नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, जैसे मराठी हुआ, या मराठी भी नहीं बोल सकते, मराठी साउथ इंडियन आते है, और जैसे हिंदी हुआ, वो हिंदी मतलब वो जो जितने उत्तर भारत की भाषा है, मैथिली है, वो सब भाषाओं का मिक्सचर है कर्नाटक, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेशन हुआ। जहाँ जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, वो जब सरस्वती नदी लुप्त हो गई, उस समय वो सरस्वती नदी के तट पे रहने वाले जो सारस्वत ब्राह्मण थे, वो सब इधर आके सेटल हुए। तो जब वो लोगों ने कन्नड़ा सीखा, तो कन्नड़ा से बात किया, उनका जो भाषा है दोनों मिक्स करके एक नया भाषा बनाया, इसका नाम है तुलु। इसलिए उस भाषा का लिपि नहीं है, तुलु, तुलु भाषा। जिस प्रकार हिंदी का भी लिपि नहीं है, हिंदी भाषा का कोई लिपि नहीं है, देवनागरी को लेते हैं, तो वैसे ही ये भाषा का भी कोई लिपि नहीं है, इट इज अ मेड अप लैंग्वेज। तो उनको बड़ा गर्व है, किसका? ये तुलु राज्य के रहने वाले जो लोग हैं, उनको बड़ा गर्व है, क्योंकि वो सारस्वत ब्राह्मण है। लेकिन जैसे माइग्रेशन हो जाता है, माइग्रेशन का अर्थ क्या है, माइग्रेशन क्या बोलेंगे हिंदी में, या परदेश में जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो ये सारस्वत ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व को त्याग करके क्या कर लिए, सब लोगों ने मछली खाना शुरू कर लिया। समुद्र के तट पे है, चलो मछली खाओ। और कुछ लोग क्या किए, वो बंगाल गए, और बंगाल जाके फिर वापस इधर आए, उनको गौड़ सारस्वत बोलने लगे। जीएसबी है ना, जीएसबी बोलते हैं कम्युनिटी, हाँ, ये सब गौड़ सारस्वत माना जाते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण, भले ही कितना भी कुछ अकाल पड़ा ना पड़ा, अपना संस्कृति को त्याग नहीं किया, उनको सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। और जब गौड़ सारस्वती है, वो लोग भी गौड़ सारस्वती सारस्वत पहले, तो वो लोगों ने क्या किया, ये जो सारस्वत ब्राह्मण है, वो तो अभी भी उनका संस्कृति था, विद्या था, वेद का, संस्कृत भाषा सब कुछ ठीक था, जैसे आहार खराब हो जाता सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बंगाल के रहने वाले ब्राह्मण है, जैसे उधर के संस्कृति, वो मछली खाने की वजह से पूरा संस्कृति बिगड़ गया, वो लोगों ने इधर से मंगवाया ब्राह्मणों को, हमको शिक्षा दीजिए। वो जो सारस्वत ब्राह्मण के मेन परिवार है उनके वंशज है रूप सनातन। तो मेरे कनेक्शन मालूम पड़ रहा है। तो ये जो जगह है इधर का और बंगाल के साथ वर्षों से कनेक्शन है, दुर्गा का शाक्त शाक्त और सारस्वत ब्राह्मण गौर सारस्वत ब्राह्मण, तो कल्चर भी एक जैसा है और थर कभी का दिखने भी एक जैसा है। आपने देखा यदुनाथ प्रभु को देखा आपने, बंगाल में जाकर देखो वैसे चेहरा में भी दिखे एक जैसा सेम कल्चर भी सेम है। तो मैं सोशल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। गौड़ शब्द क्यों पड़ा, क्योंकि बंगाल में ओरिजिनली वो लोग सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मण ब्राह्मण जो है वो सब जितने भी ब्राह्मण है उन सब में टॉप मोस्ट। इसीलिए हाँ हर चीज में संस्कृत में नॉलेज में, क्योंकि भगवान ने उनको सरस्वती नदी के तट के ऊपर रहने का भाग्य दिया। क्योंकि सरस्वती नदी के तट पे रहना ये सबको ये नहीं था, क्योंकि वो पहले जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट था, ये एरिया में यही रहेगा ये एरिया में यही रहेगा। जो हाई क्लास में हाई क्लास जो लोग हैं वो सरस्वत ब्राह्मण, और जैसे वो लोग अपना संस्कृति छोड़ दिए, सरस्वती नदी सूख गया मतलब अलुप्त हो गया कलयुग में, तो क्या हो गया उन लोगों का, हाँ तो वो जो उधर गए वो क्या करने लगे, समुन्द्र के नजदीक में चलो मछली खाओ, नहीं पहले उधर नहीं गए, पहले इधर आए बाद में इधर से बंगाल गए। हाँ हाँ क्योंकि समुद्र के नजदीक में रहते हैं, उधर जाके वो लोगों ने उधर भी मच्छी खाना शुरू की और बढ़ा दिए। हाँ तो संस्कृति को छोड़ दिए। हाँ ये लोग जो इधर रह गए और संस्कृति को बचा के रखे, इधर जो रह गए तो बंगाल नहीं गए, उनको खाली सरस्वत ब्राह्मण ही बोला जाता। तो ये जो सरस्वत ब्राह्मण है जो अपनी संस्कृति बना के रखे उन लोगों को बंगाल में बुलाया ताकि हमको अपने बच्चों को सिखाओ। हाँ जब ये लोग उधर से गए उनके जो वंशज हैं रूप सनातन, ये हमारा कनेक्शन है। तुलु के साथ बंगाल का क्या कनेक्शन है, गौड़िया के कनेक्शन सोशल कनेक्शन बताया मैंने, भेजे गए थे एक ही परिवार वन, वो बड़ा बड़ा होते होते रूप सनातन 12वीं शती ईस्वी में गए और 15वीं ईस्वी में वो मतलब 3-4 जनरेशन के बाद, उसका लिस्ट है वो आपको मैं बताऊंगा, उसका लिस्ट है पिता रूप सनातन के पिताजी उनके पिताजी वो सब पूरा लिस्ट है। उधर इधर से उधर वो लोग जाते ही वो लोग बड़े पोजीशन मिल गया उनको, सब कुछ है उसका, पूरा इतिहास है उन लोगों का, ठीक है। तो उडुपी का दूसरा अर्थ है। अभी तीसरा अर्थ है ये कर्नाटक का है। बोलो बोलते तुलु वाला ने एक अर्थ दिया, कर्नाटक का भी अर्थ होना चाहिए। कन्नड़ा में ओडेपू वड़े का अर्थ है उसको तोड़ना। वड़कम वारो लेकिन क्या ओडी ये शाम को जब रथ यात्रा होगा ना, जो रथ यात्रा स्पॉन्सर करते हैं उनको नारियल देते हैं, नारियल फोड़ने की बोलते हैं ना कन्नड़ा में, अगर बोला तो नारियल फोड़ो तो उसको क्या बोला, नहीं तेंगा क्या तेंगा ना तेंगिन का है, तेंगिन का है ओडी ओडी मतलब। तो क्या हुआ मध्वाचार्य जब चंदन को ला रहे थे तो क्या हुआ, वो जो भगवान चंदन जब टूटा तो प्रकट हुए तो इसलिए उसका नाम उड़ गया। तो बाकी जो दो है वो तो भाषा के अनुसार लोगों ने बोल दिया, हाँ उड़पी का अर्थ ये है ऐसा, लेकिन ओरिजिनल तो ये समझना चाहिए कि उड़ू पति यानी चंद्रमा के जो पति है शिव जी, इसके नाम के ऊपर ये नाम ये पड़ा समझना चाहिए। लेकिन भाषा के हिसाब से देखा जाए बाकी दो है, एक जो है पुराणिक तरीके से चंद्रमा ने इधर आया इसलिए उड़पी नाम पड़ा, दूसरा तुलु वड़ू जहाज प्राप्त किया ये, और तीसरा क्या है फुट। हाँ तो ऐसा ये तीन समझ, अभी पता लग रहा है ना कि वर्ड का स्प्लिटिंग कैसे होता है, ये बहुत मुश्किल है इसको। कन्नड़ में बोलते वड़ऊ, बड़ी मतलब बड़े, तो ये है।
भगवान का नाम उड़पी कृष्णा है क्या, जगह का नाम
ना, जगह का नाम उड़पी है, उड़पी के कृष्ण है।
फर्स्ट रिजल्ट जो है वो जगह का नाम हुआ, क्योंकि कृष्ण नहीं थे, वो चंद्र के हिसाब से उड़पी गए। अब ये दो जो है ये कृष्ण से रिलेटेड हुआ, ये कृष्ण
परशुराम का गुरु जो सिद्धि है ना,
हाँ हाँ,
तो सिद्धि को दान दिया था ना, नहीं
नहीं नहीं नहीं, कश्यप ब्राह्मण को दान दिया उन्होंने,
वसुमुनि को दान दिया, विश्व को भी दान दिया, तो बोला क्या मेरे रियल में यार तुम तुम्हारे कुछ है नहीं, मेरे डोमेन में कुछ है नहीं, तो महेंद्र पर्वत है ना, तो वो आते जो करते हैं महेंद्र पर्वत,
हो सकता है दो तीन स्टोरी हो, लेकिन मुझे ये स्टोरी में
कश्यप नहीं है, हम लोग देखा था,
कहाँ है वो
महेंद्र पर्वत,
कहाँ हाँ हो भी सकता है, नहीं एक दो पुराणों में ये अलग अलग वर्शन प्राप्त होता है, अलग अलग जगह अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीजें लिखा रहता है, सभी हाँ सभी वर्षन, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना ना ब्राह्मणों को दान दिया, और ब्राह्मणों को जब दान दिया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा ब्राह्मणों से लेता नहीं मुझे, आई डू नॉट टेक, तब उन्होंने इधर आए, तो वो गोवा से आया महेंद्र पर्वत, महेंद्र पर्वत हाँ परशुराम जी का मंदिर है, हाँ तो वो मंदिर है उधर, उधर तपस्या किया, हाँ चिपलून, अच्छा डिफरेंट वर्शन आर देयर, लेकिन कुछ लोग बोलते विमानगिरी, क्योंकि परशुराम प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा किया हुआ विग्रह है, दुर्गा जी का विग्रह, तो ठीक है तुलसी का आपको प्रसाद भी मिलता है, तुलसी दलाल से लेकर तो
वो भी लाना
शांति से नहीं करना चाहिए। तो अभी ये हो गया चंद्रमौलीश्वर, इसके बारे में चर्चा होगा, उड़पी नाम के ऊपर चर्चा हो गया, अभी चलते हैं अनंतेश्वर, अनंतेश्वर ये मंदिर कैसा है, हाँ बेटे परशुराम जी का अप्रकट होने का जगह है, ये अनमैनिफेस्टेड हिमसेल्फ हियर, परशुराम जी कौन है, भगवान के अवतार है, इज ए इंकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, विष्णु ही है, तो परशुराम जी वो सारा जगत को दिखाने के लिए, वेदों में एक मंत्र है जिसको भागवत में भी है, शिवश्च हृदयम मह्यम, मैं शिव जी के हृदय में निवास करता हूं, इस बात को उन्होंने दिखाया कैसे, ये शिवलिंग में प्रवेश हो गए, तो ये परशुराम जी ने इस शिवलिंग का स्थापना किया और इसी शिवलिंग में उन्होंने प्रवेश किया, तो परशुराम जी शिव जी को आराधना करते हैं, शिव जी परशुराम जी गुरु, दूसरी बात क्यों है, वास्तविकता में शिव जी वो संकर्षण के रूप है, इसलिए परशुराम जी उनको आराधना करते हैं, ये बहुत बहुत टेक्निकल बात है इधर, जब अनंतेश्वरा ये दूसरा टेंपल क्या, अनंतेश्वरा टेंपल, अनंत ईश्वरा, इस शब्द का अर्थ क्या है, अनंत के ईश्वर नहीं, पहला है अनंत जिनका ईश्वर, अनंत कौन है, संकर्षण, शिवजी किसका पूजा करते हैं, संकर्षण का पूजा करते, तो वही संकर्षण किस रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, वही परशुराम ने क्या किया, शिवजी का पूजा किया, इसलिए अनंत के ईश्वर, अनंत जिनका ईश्वर और अनंत के ईश्वर, ये दोनों अनंतेश्वर हो गया, हो गया कनेक्शन, इसलिए जब वैष्णव आते हैं वो ये शिवलिंग के अंदर जो निवास करने वाले विष्णु को पूजा करते हैं, शिवलिंग के अंदर निवास करने वाले विष्णु को पूजा करते हैं, ये दिखाने के लिए मैं सबके हृदय में रहता हूँ परमात्मा के रूप में, लेकिन मैं स्वयं शिव जी के रूप हृदय में रहता हूँ। आई स्टे इन लॉर्ड शिवस हार्ट। इस बात को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान क्या किए, वो अनंतेश्वर, हाँ इनको अनंतासना अनंतेश्वर ये दो शब्दों से, अनंतासना अनंतासना करते हैं अनंत जिनको जिनका आसन बना के रहते हैं वो भगवान, अनंतेश्वरा शिव जी का नाम है, ये दोनों। तो इसे इधर शैव लोग भी आते हैं और वैष्णव भी आते हैं, लेकिन मूल रूप में ये वैष्णव विग्रह है, इट इज अ वैष्णव विग्रह अनंतेश्वरा। ये बहुत सारे लोगों का ये है आराध्य देव है। जो हमारे जो आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य उनके माता पिता अनंतेश्वर मंदिर में 12 किलोमीटर रोज चलते हुए 12 साल तक आए केवल दूध पीते हुए, इधर आके रोज प्रार्थना करें एक ऐसा पुत्र दो ताकि आपका जो महिमा का प्रचार कर सके। जिस प्रकार अदिति और किया था, क्या व्रत किया था, पयोव्रत किया था, कितना दिन के लिए किया था, 12 दिन, लेकिन इन लोगों ने 12 साल किया। और अनंतेश्वर का कृपा से श्रीपाद मध्वाचार्य का प्राकट्य हुआ, और जिसकी कृपा से प्रकट हुआ उसी मंदिर में बैठ के श्रीपाद मध्वाचार्य अप्रकट भी हो गए। श्रीपाद मध्वाचार्य अप्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप में अप्रकट हो गए। कैसे, वो ऐत्रेय उपनिषद महाऐत्रेय उपनिषद क्लास दे रहे थे, अंत में क्लास देने के समय सारा उड़पी के सब लोग आके सुन रहे थे, तो ऊपर से आकाश पुष्प गिरने लगे, धीरे 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 से उनका शरीर जो है पुष्पों से भरने लगा, भरते भरते पूरा शरीर डूब गया पुष्पों में, अचानक जो है आवाज बंद हो गई। उनके शिष्य लोग जाके जैसे सब लोग खुलने लगे, पुष्प कोई नहीं, मध्वाचार्य है ही नहीं उधर, फिर अंगवस्त्र रह गया। तो ये अनंतेश्वर मंदिर में हमने जब दर्शन किया, समय आपको दिखाया था, कुछ भक्तों को दिखाया था, जहां से मध्वाचार्य जो है अंतर्दान हो गए उस जगह को दिखाया। अभी उधर नित्य रूप में मध्वाचार्य अभी भी है उधर, ही स्टिल स्टेज देयर, क्योंकि एक बार वाजिराज तीर्थ ने सोचा इस लीला की स्मृति के लिए हम एक मध्वाचार्य का विग्रह बनाएंगे, बना के उधर बैठाएंगे। लेकिन उन्होंने विग्रह बनाया, बना के उधर बिठाने के लिए जा रहे थे, अगला दिन बिठाना था उनको, स्थापना करना था, उसके पहले रात दिन रात को मध्वाचार्य सपने में आके कहा मेरे सर के ऊपर पत्थर क्यों रख रहे हो, यानी मैं उधर बैठा हूं, आई एम सिटिंग देयर। उधर लिखा है अदृश्य रौप्य पीठे स्थित दृश्यस्ते बदरी तटे, उधर लिखा है अनंतेश्वर मंदिर में जाए जाके दिखाया था आपको, दिखाया तू नहीं आया था, उधर लिखा हुआ अब जाके देखो, संस्कृत में लिखा हुआ है, इन संस्कृत कन्नड़ा में लिखा हुआ है और संस्कृत में लिखा हुआ है। अरे वो हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी का लिपि नहीं है, हिंदी का कोई लिपि नहीं है, देवनागरी है। ये बोलता है संस्कृत का है लेकिन हिंदी में लिखा है, अब भी गला फाड़ के बोला था कि हिंदी का तुलु का लिपि नहीं है, इंग्लिश का लिपि है, फिर वापस वही देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है,
पहले हिंदी वाले कुछ नहीं था,
हिंदी भाषा भी नहीं था, अभी भी हिंदी का कोई लिपि नहीं है, संस्कृत भाषा है, देवनागरी लिपि है, संस्कृत का लिपि है वो,
देवनागरी मैथिली है ना, संस्कृत ऐसा होता है ना, देव मतलब भगवान, नागरी मतलब उसका श्लोक, हमें करेक्ट,
देव का अर्थ है देवता, नागरी का अर्थ है उनके नगर, देवताओं के नगर में बोलने वाली भाषा। ठीक है, एनीवे तो कहां तक पहुंचे हम लोग, अनंतेश्वर। अनंतेश्वर क्यों, अनंतेश्वर जब जाएंगे हम प्रणाम करेंगे, क्या किसको प्रणाम करेंगे, ये ध्यान में रखते हैं कि शिव जी और विष्णु के बीच में कितना गहरा संबंध है। शिव जी के हृदय में भगवान शिव भगवान निवास करते हैं, भगवान के हृदय में शिव जी निवास करते हैं, इस बात को प्रत्यक्ष रूप में इस मंदिर में ये जो है परशुराम प्रतिष्ठित विग्रह है, परशुराम जी इसी विग्रह का प्रतिष्ठा करके ऐसा माना जाता है उन्होंने बहुत तपस्या किया, इधर आराधना करते थे और उधर ही उन्होंने ही ये एंटर्ड इन टू द बॉडी ऑफ अनंतेश्वर टेम्पल, ऐसा लोगों के कहना है। अनंतेश्वर इज नॉट ए शिवलिंग, शिवलिंग बाहर से शिवलिंग है लेकिन है विष्णु का विग्रह। ये बहुत इंट्रिगेट सब्जेक्ट मैटर है। हाँ वो है ना, वो एक भक्त को रक्षा करने के लिए शिवलिंग से नरसिंह प्रकट हुए, या क्योंकि शिव जी के हृदय में हमेशा निवास करते हैं, ही स्टेज देयर। तो ये दोनों का संबंध जो नहीं जानता है वो ना वैष्णव है ना शैव है बल्कि वो पाषंडी है। शिव जी और विष्णु के बीच में संबंध को जो नहीं जानता है, इधर संबंध को स्थापना करने वाले हर जगह शिव जी तो कहीं भी हो शिव जी है ना, वेयर एवर इट इज, अरे उसके लिए नहीं है, इट इज नॉट बिकॉज दैट। वो शिव जी प्रकट होते हैं पंच महाभूत में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश लिंग जल लिंग वायु लिंग अग्नि लिंग, कभी एक जगह ज्योति है आप जाओगे कहाँ श्रीकाड़ हस्ती जो वो अग्नि लिंग है, और अम्बुलिंग इधर है तिरुवानकावड़ श्रीरंगम के पास में, उधर खाली पानी आता रहता है, वो शिव जी पानी के रूप में उपस्थित है, पंचभूतों के लोगों को भूतेश्वर कहा जाता है। नहीं हो क्यों शैवागम में लेके जाते हो, डोंट टेक मी टू शैवागम, हम लोग शैव वैष्णव क्षेत्र में ही रहते हैं क्योंकि साउथ में आया तो शिव जी के बारे में बोलना ही पड़ेगा, वी हैड टू स्पीक अबाउट लॉर्ड शिव क्योंकि उसके बिना चलता ही नहीं आगे, यू कैन नॉट। हाँ तब से शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कृष्ण का चालू नहीं किया, साउथ मतलब कुछ ना कुछ रहेगा, शिव शिवा कुछ तो बोलेगा अगर वैष्णव इतना संप्रदाय का जुड़े रहने के बाद भी शिव जी का ही बात निकल रहा है अभी तक, क्यों दो दो शिव जी का मंदिर है इधर। बारह लिंगों में वो ऐसा कुछ ये है, शिवा एंटर्ड बारह जगह प्रकट हुए, उनका कुछ स्टोरी है मुझे पूरा याद नहीं है, मैं कभी और बताऊंगा, सम स्टोरी आई नो ही एंटर्ड इनसाइड, वो बारह जगह उनका प्रकट हुए मैनिफेस्टेड। नहीं ये ज्योतिर्लिंगों में, बारह ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता, बट दिस इज स्पेशलिटी। तो ये अनंतेश्वर टेम्पल का फेम, अनंतेश्वर टेम्पल का एक फेमस पास टाइम बताऊंगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए मध्वाचार्य को, और मध्वाचार्य जब छोटे से बालक थे उनके गुरु अच्युत प्रेक्षा, अच्युत प्रेक्षा अस्तित्व में मायावादी सन्यासी है, हृदय से वैष्णव है लेकिन पढ़ते मायावादी बुक सब कुछ है, क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा परिस्थिति था कि वैष्णव मायावादियों का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो सामना करेंगे तो तर्क होगा, तर्क होगा तो हार जाएंगे तो उनका शिष्य बनना पड़ेगा, इसलिए वो लोग क्या किए चुपचाप वो पहाड़ के पास जाके अपना वैसे दिखाते थे हम भी वहां आपके साथ नहीं है लेकिन हृदय में वैष्णवता को। ये बात अच्युत प्रेक्ष के गुरु जब उनका मृत्यु होने वाला था उस समय उनके शिष्य को जाकर बताया आज तक मैं तुमको जो भी सिखाया वो सब गलत है, अस्तित्व में हम भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में स्वीकार करने वाले हैं क्योंकि हम लोग शास्त्र में निपुणता नहीं है, तर्क में निपुणता नहीं है, इसके वजह से हम को चुप होके बैठना पड़ रहा है, लेकिन अभी वो समय खत्म हो गया है क्योंकि तुम्हारा एक महान शिष्य होगा, उसका नाम है मध्वाचार्य, वो इन सब मायावादियों को खंडन करेगा और हमारा जो सर समाज में हमारा सर ऊंचा रहेगा, इस प्रकार उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरा शिष्य कौन है, तो अच्युत प्रेक्ष ने कहा ना को ने कहा कि तुम इस प्रकार पहचान सकते हो, एक बालक है, एक छोटा सा बालक है, तुम देखोगे उस बालक को उसके पीछे दुर्गा शेर की ओर बैठ के जाती रहे, उनको एक्सकॉर्ट करते हुए जाएगी, उनको देखभाल करते हुए जाएगी। तो समझ लेना ये बालक, तो बाद में स्टोरी बताऊंगा मैं। तो एक बार इस अच्युत परीक्ष को मध्वाचार्य को दिखाई पड़े, 3 साल का बालक। अच्युत परीक्ष, ये लड़का ये सारा जगत को उद्धार करने वाला है, चलो मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए, कुछ भी होने दो, अपना मठ वट सब छोड़ के। ये जैसे वो मध्वाचार्य का 4 साल ऐसा 5 साल होने हुआ, तो वो रोज आते थे इधर अनंतेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। अच्युत परीक्ष क्या करता था, अनंतेश्वर मंदिर का एंट्रेंस है ना, उधर इधर बाजू में बैठे थे, बैठ के लड़के को इतना सुंदर लड़का को आते हुए देखते हैं, अनंतेश्वर को प्रणाम करेंगे, जब जाता है उस समय उस बच्चे को बुलाएंगे, आओ जरा कुछ लोग सुनाओ, अच्छा है अगर सुनाओगे मैं तुमको प्रसाद दूंगा। तो बच्चा बड़ा श्लोक बोलेगा, वो तो प्रसाद देता है सन्यासी। इस प्रकार धीरे धीरे से मित्रता बढ़ने लगी। जैसे मध्वाचार्य का ये कितना हुआ, 4-5 साल चला ऐसा। एक बच्चे को इस प्रकार करोगे तो एकदम साथ में रहने लग जाएगा। तो 8वां साल नहीं हुआ मध्वाचार्य का, तो एक दिन पिताजी को बोले कि मैं घर नहीं आ रहा, मैं संन्यास ले रहा हूं। ये पूरा जो चिल्ड्रन प्रीचिंग प्रोग्राम शुरू हुआ इधर से। अच्छा तो प्रेक्ष वो रोज खड़ा रहते थे, हाँ ये लड़का रहे, इसके ऊपर से नजर था। इसको पकड़ो काफी है बस। यूथ प्रीचिंग, चाइल्ड प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, जो भी कहो, डायरेक्टली संन्यास। इनका संन्यास के बारे में डिस्कस किया था। So it is like this. This is what is the story of Ananteshwara. Ananteshwara Mandir ka ye itne ghatnaye hai. Aur Madhvacharya prakat ho rahe karke bhavishyavani bhi swayam Ananteshwara ne kaha tha. Anantasana ne kaha, Ananteshwara ek vyakti ke hriday mein aake unhone wo ek pagal ki wahan pe wo chillane laga, abhi samapt ho gaya, abhi samapt ho gaya, maya vaju ka khandan hoga, abhi vaishnav jo hai wo khule aam ghum sakte hai, भगवान साकार है, इसको प्रकट करने वाले एक महान वायु स्वयं प्रकट होने वाले करके उन्होंने घोषणा किया था। ये हेराल्डेड इन अनंतेश्वर टेम्पल। तो अनंतेश्वर टेम्पल ये दोनों का हुआ। उसके बाद हमको दर्शन करना चाहिए उड़पी कृष्ण का। कहाँ से दर्शन करना चाहिए हमको, या डू एक दर्शन फ्रॉम कनक कनकेंडी। वो कनक का विग्रह को भी दिखाया था मैं आप लोगों को, एक डेटी है, एक स्टैचू है, कनक दास कनकना किंडी। किंडी का अर्थ है कि विंडो, कनकना किंडी विंडो। अभी पौने 10 बजे ना, 10 बजे हम समाप्त करेंगे, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट देंगे बाद में।
कनकना किंडी,
किंडी, किंडी का अर्थ है विंडो,
विंडो,
विंडो। तो कनकना किंडी उधर से आप दर्शन कर सकते हो। एक बार एक महान भक्त आए जिनका नाम है कनकदास, वो शेपर्ड, शेपर्ड का अर्थ है बकरी को देखभाल, बकरी को देखभाल करना। हाँ, वो जाति के थे। तो वो आए तो बहुत दूर से चलते चलते आगे कृष्ण का दर्शन का करने के लिए। लेकिन उस समय जो मंदिर में केवल ब्राह्मणों को ही अंदर अलाउड था, तो ब्राह्मण परिवार में है वही व्यक्ति अंदर जा सकता है, तो बाकी लोगों का दर्शन भी नहीं, ऐसी स्थिति था। दर्शन करना है तो कहीं और से दूर से बस हाजिरी लगाओ, ये तो अलग बात है, कम से कम इधर तक तो आ सकते हैं। गुरुवायर में तो ऐसा हालत था कि 2 किलोमीटर दूर। अभी गुरुवार का दर्शन करने के लिए जो अन्य जात के लोग हैं वो 100-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल चल के आते हैं। किसके लिए, गुरुवार के दर्शन करने के लिए। दर्शन क्या है, वो जगह जहां उनको सीमा किया गया है उधर तक आएंगे, ओ जय गुरुवार बोलेंगे, निकल जाएंगे, दर्शन हो गया। पांडवपुर में कभी नहीं थे ऐसा, पांडवपुर दूसरी बात उसको मतलब बीच में भी। नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। नहीं कौन कहा, ना 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 कभी नहीं। पंडरपुर वाज नेवर लाइक दैट। पंडरपुर में देखो ये जो है ना हिस्ट्री, हिस्ट्री इज नॉट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री का अर्थ क्या है, पौराणिक हिस्ट्री, आचार्यों की जो स्थिति वो हिस्ट्री है। हम बात करें वो ये सब तो नहीं, हिस्ट्री है वो। हुआ रहेगा, 10 साल के लिए हुआ था, 15 साल के लिए हुआ, हमको क्या हुआ, हिस्ट्री में हिस्ट्री, ये इसका इतिहास है। अस्तित्व में आपने कहीं देखा इधर कृष्णा टेम्पल करके लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसको, क्या है तो मठ में टेम्पल में अंतर क्या है? मठ में सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहला रूल है कि मठ में विग्रह है जो उसका आराधना करते हैं उसका प्रॉपर्टी है। विग्रह जो है, जो जो सन्यासी जिसकी आराधना करते, जो विग्रह जो आराधना करते वो विग्रह उसका प्रॉपर्टी है, वो खुद का है, इट इज ए पर्सनल डेटी। मंदिर में जो विग्रह है वो पुजारी का पर्सनल डेटी नहीं है, वो पब्लिक है, मंदिर पब्लिक है, मठ जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब सन्यासी। इसके वजह से गवर्नमेंट का एंडोमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर लागू नहीं होता है, मठ के ऊपर, मठ मोनेस्ट्री इसके ऊपर गवर्नमेंट दखलंदाज नहीं कर सकती मठ को। हमारा भी इस्कॉन भी मठ है, इट इज नॉट ए टेम्पल, हम लिखते हैं राधा गिरिधारी टेम्पल बट एक्चुअली इट इज ए मठ। टेम्पल है तो तुरंत एंडोमेंट्स का रूल लागू है, जैसे तिरुपति टेम्पल है, श्रीरंगम टेम्पल है, वो सब गवर्नमेंट संभालता है, लेकिन उडुपी के ऊपर हाथ नहीं लगा पाए, क्यों? इट इज ए मठ। एडमिशन राइट्स आर रिजर्व्ड, वो आचार्य अगर चाहते हैं कि मेरा है मुझे नहीं कोई कुछ नहीं, बंद। इट इज ए पर्सनल डेटी ऑफ द आचार्य इज वर्शिपिंग, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इन द हैंड्स ऑफ ए सन्यासी, एडमिनिस्ट्रेशन सन्यासी के हाथ में। So that is a fundamental difference. दूसरा, temple में जो प्रतिष्ठा के समय जो आपने रूल बनाया, ये टाइम में ये होगा, ये टाइम में ये होगा, ये टाइम में वो होना ही है, 7:15 बजे दर्शनार्थी तो होना ही, लेकिन मठ में भगवान की सेवा जो है भक्त का भाव के अनुसार होता है, 7:15 बजे हो सकते हैं, 7:30 भी हो सकते हैं, होगा सेवा। मान लो कि एक दिन ऐसा है कि कुछ उनको श्रृंगार करने में टाइम लग गया तो इसलिए आप पूछोगे प्रभु जी मंगल आरती कौन से टाइम में, मैं इतना ही बोलूंगा कल सुबह है, अभी ड्रेसिंग दर्शनार्थी आज तो कितने 7:30 बजे हो गया, लेकिन पिछले पर्याय में देखा था आज 8:30 बजे होता दर्शनार्थी, वो पुत्री के मठ के स्वामी जी तो बैठ के करते ही रहेंगे, इतना 15 मिनट में कर दिया पूरा, 15 मिनट करके चलो हर हरी बोल, दर्शन ड्रेसिंग हो गया तो दर्शन करके निकलो, फिर पुत्री के मठ के स्वामी जी करते करते रहेंगे, वो पूरा 8:30 बजे पूरा फर्स्ट क्लास करेंगे। और गो पूजा हम जब गए थे वो टाइम गो पूजा भी खत्म हो गया था, जनरली गो पूजा 7 बजे होता है, 6:30 7 o'clock को होता है, 6:30 को होता है, हम कब के ऑलमोस्ट 5:30 बजे पहुंच गए अंदर, 5:30 बजे गो पूजा समाप्त, गाय को देखा था ना राइट साइड में गाय का था, तो ऐसा कोई टाइमिंग देखा आपने, ये टाइम में ये है, टाइम में ये, ऐसा कुछ लिखा हुआ है देखा? हाँ, क्योंकि हम हमारा मठ है लेकिन एक मंदिर के हिसाब से चलाते हैं, वी आर रनिंग इट अकॉर्डिंग टू ए टेम्पल लाइक दैट, बट एक्चुअली इट इज दैट ओवरसीज ऑल्सो मठ, इट डजंट बिलोंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। ये जो श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य जो है उसका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज देयर प्रॉपर्टी, इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम एंडोमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो बनाया गया ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया भारतीय सभ्यता को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, हाँ, मंदिर का सारा प्रॉपर्टी छीनने के लिए बनाया गया था, और जिस जिस मंदिरों में ज्यादा फायदा होता है उस मंदिर को देखभाल करेंगे, उसका जितना भी जमीन है प्रॉपर्टी सब छीन लेंगे, गवर्नमेंट देखभाल करेगा लेकिन मठ को कोई देखभाल नहीं कर सकता। जैसे एक मठ है राघवेंद्र मठ, ब्रिटिश के ऑफिसर एक आए थे रॉबर्ट मुनरो, वो उनको इसलिए इंडोमेन डिपार्टमेंट जिसको सौंपा गया था क्योंकि वो बहुत धार्मिक थे, वेरी रिलीजियस पर्सन, भले ब्रिटिशर थे। तो वो आए मंत्रालय में, इतना बड़ा उडुपी मंदिर तो छोटा है, ज्यादा लोग नहीं आते, मध्वाचार्य का मूल संस्थान, लेकिन मंत्रालय में जाओ हजारों हजारों लोग आते। लेकिन उसका सब्सिडरी मठ एक छोटा सा ब्रांच है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग आते हैं, उसके कारण मैं बाद में बताऊंगा। तो जितना संपत्ति, इतना धन, इतना ऐश्वर्य देखे, और ब्रिटिश लोगों ने कहा उसके ऊपर प्रेशर डाला, आप जाओ इसको हड़प लो ना, इतना इतना संपत्ति इधर, हिंदू लोगों का मंदिर है, मंदिर बना। तब वो था मठ, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स करके उसको टेम्पल के रूप में पेश किया, ऑलमोस्ट कोर्ट ऑर्डर भी तैयार था कि गवर्नमेंट जो है उसको कब्जा करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कब्जा करेगा। तभी राघवेंद्र स्वामी उस समय समाधि में चले गए थे, वो स्वयं रॉबर्ट मुनरो के पास आके कहे कि यू कैनॉट गो, ये जो है भगवान का है, मूल राम का सेवा के लिए है, आप नहीं कर सकते हो।
समाधि में जाने के बाद
की बात है, अभी भी वो जीवित है, ही इज स्टिल देयर। ये जो राघवेंद्र स्वामी के मठ में लेके गया था इधर में, जस्ट टू क्यू देयर, जो प्रहलाद के अवतार जिनको कहा था मैंने, वो राघवेंद्र स्वामी उनको स्वयं आके कहे, ही टोल्ड। तो उस समय रॉबर्ट मुनरो उन्होंने क्या किया कि जूता निकाल के, हैट निकाल के मंदिर में जाके प्रणाम करके बाहर आए, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने घोषणा किया राघवेंद्र मठ। ये सब मठ, मठ मीन्स मॉनेस्ट्री, एंड डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस। हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक गवर्नमेंट है उनके अंदर में ऑथराइज्ड रिलीजियंस रहता है, ऑथराइज लीगल रिलीजियंस, तो वो लोग मंदिर बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, सब फ्रीडम रहता है उनका, ये रहता है। तो हिंदुइज्म इज ऑथराइज्ड रिलीजन। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको पालन करने वाले ये कौन है, तुमसे अगर कोई पूछेगा तुम हिंदू हो क्या बोलोगे?
सनातन।
तुम क्या बताओ, हिंदू हो?
नहीं,
तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? तकलीफ ये है, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको पूछे, एक फॉर्म दिया आपको, ठीक है, आप मंदिर बनाना चाहते हैं, कौन सा मंदिर बनाना चाहते हो, इस्कॉन का, इस्कॉन का मंदिर तो यही अलग रिलीजन है। तो आपको क्या करना है, मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं कम्युनिटी हॉल बना रहा हूं। तो ऐसा आपको ऐसा पेश करना होगा। तो रिलीजियस ट्रस्ट के अंतर्गत उनका चले जाता है, रिलीजियस एक्ट होता है ना, रिलीजियस एक्ट, तो उसके अंतर्गत आता है। अगर आपका जो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट है, लीगलिटी, इट्स अ ट्रस्ट। तो ये जो विग्रह है, दिस टेम्पल, दिस उडुपी कृष्ण मठ, दिस टेम्पल बिलोंग्स टू सन्यासी। इंस्टीट्यूट ऐसा रिलीजियस रिलीजियस ट्रस्ट ना, ए टेम्पल। तो टेम्पल में और मठ में आपको ये डिस्टिंक्शन प्राप्त होगा, फंडामेंटल डिस्टिंक्शन इज दिस, ये मठ है, दिस इज अ कृष्ण मठ, इट इज नॉट ए कृष्ण टेम्पल। मठ, मठ में एक आचार्य होते हैं, शिष्य होते हैं, वेद का पठन पाठन होता है, जो आचार्य कहता है वो फाइनल, दैट इज कॉल्ड मठ। टेम्पल में पब्लिक बोलेगा, झंडा निकालेगा, पब्लिक के हिसाब से तो चलना पड़ता है, ठीक है। Understood the difference? So coming back to the point. तो कनकदासा, तो कनकदासा और एक महान भक्त जिनका नाम पुरंदर दासा, और ऐसे बहुत सारे रामदासा, ऐसे बहुत सारे दास है, लेकिन प्रसिद्ध ये दोनों हैं, कनकदासा। तो कनकदास आए, तो उस समय ब्राह्मणों को ही अलोड था, तो पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है, क्योंकि वो आचार्य वो टाइम में वो सिस्टम था, जैसे जगन्नाथपुरी में खाली हिंदुओं का अलोड, तो चैतन्य महाप्रभु उसको आदर दिया कि नहीं, आदर दिया कि नहीं चैतन्य महाप्रभु ने? हरिदास ठाकुर ने आदर दिया सनातन, चाहे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का हाथ पकड़ के अंदर लेके जाए कोई रोक सकता था? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तो वो जो सिस्टम है उसको आदर दिया। वो टाइम है दिस वॉज अ सिस्टम एवरीबडी रेस्पेक्टेड। तो कनकदास को मालूम था ये भी, वो अंदर नहीं गए, ऐसा नहीं कि अंदर जाने के लिए प्रयास किया लोग उनको फेंक दिया बाद में भगवान के लिए रोए, नहीं उनको मालूम था, उन्होंने आदर दिया ये सिस्टम को, सिस्टम जो ब्राह्मण लोग ही अंदर जाएंगे उनका सेवा पूजा करेंगे दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान का तो दर्शन है इन भौतिक आंखों के द्वारा नहीं होता है। एक ब्राह्मण है जिसका भक्ति नहीं है, भले भगवान को दर्शन कर रहा है लेकिन अगर ब्राह्मण जात का नहीं है लेकिन वो 100 किलोमीटर दूर से चलते चलते भगवान का नाम उच्चारण करते भाव से आके हे भगवान अय्यप्पा गुरुवायरप्पा बहुत बहुत धन्यवाद आपने दर्शन दिया करके बोला तो भगवान उनको दर्शन उसका दर्शन उसका भक्ति ज्यादा है तो दर्शन हुआ। तो ये बात सिद्ध करने के लिए भगवान की जो दर्शन है इन बौद्धिक आंखों को दिखा दिया नहीं जाता है। तो पहले के लोग स्वाभाविक तरीके से इन बातों को जानते थे, ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, ये गलत करके भी नहीं सोचना चाहिए। दैट वाज अ सिस्टम एट दैट टाइम, नो प्रॉब्लम विद दैट सिस्टम। एक बार प्रभुपाद जी के पास लेटर लिखे किसने जगन्नाथपुरी के लिए, क्या लेटर लिखे कि प्रभुपाद मैं कोर्ट केस करूंगा कि ये साबित करूंगा कि हम इस्कॉन के जो भक्त है वो हिंदू है तब हमको अंदर जाने देंगे। प्रभुपाद ने कहा इतना ही उत्साह है तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लॉस एंजल्स आ जाना। If you are so interested, come to Los Angeles. वो आसान है, कोर्ट में जाके हंगामा करने से अच्छा ही कम Los Angeles. तो दर्शन का अर्थ क्या है? It is not by your material eyes. तो कनकदास आए तो आके हे भगवान मुझे दर्शन दो, ऐसा ना इच्छा रखती है, ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं किया। उन्हें बहुत सुंदर गीत है, कन्नड़ा गीत है, कोई अच्छा गा सकते तो हमारे पास नहीं है गाने वाले मुगल। तो गाते भगवान ने क्या किया, अपने आप को पीछे वेस्ट वेस्ट की ओर मुड़ लिया, पूरा ईस्ट से पूरा वेस्ट है सब टर्न। तो पहला जो दरवाजा था ईस्टर्न, जैसे हम लोग एंटर करते हैं मैंने कहा ना एक चन्नकेश्वर एक विग्रह देखो, जैसे अंदर एंटर करो सामने एक विग्रह दिखाई पड़ा चन्नकेश्वर, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डोर। वो दरवाजे हाँ पहले मेन एंट्री था, वो उधर से भगवान का दर्शन होता था। तो वो जो एंट्रेंस है उधर चन्नकेश्वर का विग्रह रखे, क्योंकि वो डोर पहले खुला था जो भगवान घूम गए बाद में खुला भी था, लोग क्या करते थे अंदर सीधा पहुंच जाते थे डायरेक्टली इनसाइड। बाद में दरवाजा बना दरवाजा बंद करके चन्नकेश्वर का विग्रह स्थापना किया और पूरा साल में विजयदशमी के दिन एक दिन खोलते उसको, दे ओपन द डोर वंस इन ईयर विजयदशमी के दिन। नहीं विजयदशमी के दिन मध्वाचार्य का प्राकट्य दिवस है, मध्वाचार्य यूज़ टू एंटर थ्रू द डोर। इसलिए लेकिन अभी के कुछ आचार्य है कुछ लोग हैं इस कहानी को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि पहले ऐसा घूमना उमना कुछ नहीं था, सब कुछ पहले से जैसा ही ऐसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नीच जात का व्यक्ति है, हमसे बड़ा भक्त बन गया क्या, हम सीनियर डिवोटी है, हम ब्राह्मण है वो अहंकार। तो ये जो ब्राह्मणत्व का जो अहंकार है ये दिखाई पड़ता है। इस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु आके खंडन किया और डांटे, चैतन्य महाप्रभु ने केम हियर ही स्कोल्डेड द तत्ववादी, तुम ही तत्ववादी, तुम्हारे आचार्य को तुम फॉलो नहीं कर रहे। तो ये जो कर्म का मिश्रण बहुत हो गया था, कर्म मिश्र भक्ति जो है इधर बहुत ज्यादा हो गया था, उन लोगों का प्रचार ही होने लगा अगर आप ब्राह्मण हो तो साधना वाधना करके पूजा वूजा करके भगवत धाम जाओ, अगर क्षत्रिय हो तो अपना ड्यूटी करो वैश्य अपना ड्यूटी करो थोड़ा सा फल हमको दे देना बस। श्रवण कीर्तन के ऊपर वो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे हम मान लो कि हम किसी से मिले चाहे वो शूद्र हो क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो कुछ हो, हम ये सब देखते नहीं, क्या बोलते चैंट हरे कृष्ण बोलते, हम ये नहीं बोलते तो तुम वैश्य है ना तो अपना बिजनेस करो बराबर फर्स्ट क्लास बिजनेस करो तुम अपना धन जो है भगवान के लिए दे देना, ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण समझ रहे ना, ये बात इधर मिसिंग था। मध्य भाषा मिसिंग नहीं था, उस समय के फॉलोअर्स मिसिंग। चैतन्य महाप्रभु खूब डांटे, धना धन लेफ्ट राइट डांटे, सब सन्यासी को एकदम झुकना पड़ा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव की वजह से आज शाम को देखोगे कीर्तन होता है, चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में डांसिंग भी होता है, सर्कल सर्कल में करके डांस करते हैं। It happens now also.
आज हम दर्शन करेंगे।
शाम को अब डांसिंग होता है, कीर्तन होता है, डांस होता है।
सेलेक्टेड ग्रुप ही
है। हाँ सेलेक्टेड ग्रुप ही, इतना छोटा टेम्पल है, सब लोग करने लगे हैं तो क्या हो जाए। वो थोड़ा 5-6 लोग हैं, उनका स्पेशल टाइम है, डांस करते हैं। शाम को टाइम अगेन बात ध्यान से सुनो फिर वापस टाइम मत पूछो अभी बताया मत में अंदर अंदर क्या कहीं देखा है कि टाइमिंग क्या है नो तो ये कनक दास का नहीं ये स्टोरी है कनक दास का। हमने कनक दास तक स्टोरी चर्चा किया और भी पुरंदर का स्टोरी इस प्रकार है। पुरंदर दास तो मेनली वो पंडरपुर निवास किए, ये पंडरपुर जो है वो कर्नाटक का विग्रह है और पंडरपुर के नजदीक में पुरंदर निवास कर रहे थे, जैसे नारद के अवतार है। तो उनका ऐसा है कि एक छोटा स्टोरी इस प्रकार है, पहले बहुत लोभी व्यक्ति थे, व्यापारी थे, डायमंड ज्वेलरी का व्यापार। उनकी पत्नी एक अच्छी भक्ति, एक ब्राह्मण आया उनकी पुत्री का विवाह करके, उन्होंने कहा मैं अपनी पुत्री को विवाह करके मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, संन्यास देना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी को बहुत दया आई, पति तो कुछ दिया नहीं पैसा उन्होंने। पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन मेरा एक नतनी है आपने, तो नतनी उनको दे दिया। तो ये ब्राह्मण जाके उनके पति के पास जाके बेचा फंस गई पत्नी तो जितना पैसा चाहे ले लो। पति के पास आके पूछा कहाँ है नतनी दिखाओ, तो वो सीधा गए भगवान विट्ठल के पास, प्रार्थना करने लगे आप कुछ करो। तो जैसे वो बॉक्स खोली उसके अंदर वैसे ही नतनी पति को दी। पति जाके देखते रहे तो पत्नी से पूछे क्या है सच बताओ। तब उनकी पत्नी ने कहा ऐसे ऐसा हुआ। तो तुरंत सबको छोड़ छाड़ के सब उन्होंने क्या किया, विट्ठल के शरण ले लिया, भगवान सत्य है। देन ही स्टार्टेड व्यास तीर्थ का वाजराज तीर्थ का शिष्य बने और बहुत सुंदर गीत वगैरह करने लगे भ्रमण करते करते। ये पुरंदर दास का ये कौन, नहीं नहीं वो तो ये है तुकाराम, पुरंदर का नहीं है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ऑल्सो वेंट अलोन। अब ध्यान, तो ये इधर तक हमने चर्चा किया, वी डिस्कस समथिंग टिल नाउ, जो ये कौन है, हु इज दिस डेटी, मूड क्या है इधर का, वो सब चीजें बाद में हम विल डिस्कस। हाँ लोअर का पुरंदर दास भी दो प्रकार का संप्रदाय है, एक है व्यास कोटा, दूसरा है दास कोटा। ये व्यास कोटा का अर्थ है कि जैसे हमारा भक्तिनोद ठाकुर और जैसे भक्तिनोद ठाकुर जो शिष्य है, शिक्षा होगा वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र के ऊपर आधारित जो शिक्षाएं दिया जाता है उसको व्यास कूट कहा जाता है, वेद व्यास की शिक्षाओं की तरह। दासकूट का अर्थ है स्पॉन्टेनियस डिवोशन, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम की भाव को गीतों में प्रस्तुत करना, इसको दासकूट कहा जाता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिनोद ठाकुर, भक्तिनोद ठाकुर व्यासकूट, नरोत्तम दास ठाकुर दासकूट, और ये ऐसा इस प्रकार से ठीक है। तो अभी क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, जगह के बारे में हम थोड़ा सा विग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। वो इज अ मूड, मूड ऑफ द डेटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धाम में जाएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे, मूड ऑफ द डेटी चर्चा करना, डिस्कस करेंगे। कभी थोड़ा आराम कर लीजिएगा, 10 बज गया, ठीक 11 बजे इधर एकत्रित हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछते रहो, बताते रहेंगे।
अभी नहीं यार,
آج بتاؤں گا, آج ہوا نہیں نا ابھی تک, جا کے ابھی تھوڑا آرام کرو, سونے دو, ایسے تھوڑا نیند آ رہا ہے مجھے بھی تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے, تو جائیے اور ٹھیک 11 بجے آ جائیے, بلانے کی محبت نہ پڑے, ٹھیک ہے, تھینک یو. 11 بجے نکلیں گے نا, 11 بجے نکلیں گے, کیرتن کریں گے تھوڑا سا, ہری نام سنکیرتن ایک جگہ جا کے, پھر 1 بجے پرساد لیں گے, بعد میں پادک کھیتر ادھر جائیں گے, مطلب اچھا پرساد ادھر ہے, ہاں, اور ایک ٹیمپل میں پرساد,
12:30 بجے
شام کو ملیں گے مجھے مال میٹ میں, بہت ٹائم تک ملتا ہے, دوپہر کو بھی کرتے ہیں, ہاں بیٹھ کے دیتے, مطلب اچھا نہیں, ٹھیک ہے جائیے آرام کرو,
رو جی.